श्रोता मित्रों, अर्पा रेडियो के कार्यक्रम भारतीय प्राचीन मनीषा में हम आपको सुनवा रहे हैं भारत को चार खूंटों में किसने बांधा। आइए सुनते हैं वर्चस्व श्री दिनेश कुमार के स्वर में पांचवा भाग।
आदि गुरु शंकराचार्य, एक दिन उनको गुरु को सूचना मिलती है कि 3 दिन हो गए शंकर उठा नहीं है। तो कहते हैं अच्छा एक कदम आगे जाके देखो क्या हो रहा है। एक लड़का जाता है, वापस आके कहता है गुरुदेव वहां तो अद्भुत सुगंध भरी हुई है उस गुफा में। अच्छा ठीक है, इसका मतलब इसका पृथ्वी तत्व सिद्ध कर दिया गायत्री ने। 2 दिन और बीतते, 5th डे फिर से कहते हैं जाके देख के आओ। जाता है एक लड़का, जाके बोलता है गुरुदेव उसके यहां नाभि से चिंगारियां निकल रही हैं, अग्नि के स्फुलिंग। अच्छा अग्नि तत्व जागृत हो गया गायत्री से, ठीक है। 8वें दिन गुरु उठ करके स्वयं पहुंचते हैं और ये कहते हैं अगर अब मैं नहीं गया तो इसका कपाल जागृत हो जाएगा, और ये यहां पर कपाल जागृत करने नहीं आया, ये पृथ्वी पर विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने आया। जाते हैं 8वें दिन उसके सिर पे हाथ रखते हैं, जाग। जागते हैं, प्रणाम करते हैं और गुरु कहते हैं कि देख बेटा अब तेरे सन्यास के विधिवत क्रम का दिन आ गया है। एक दिन सुनिश्चित होता है, आसपास के सभी स्थानों पर सूचना चली जाती है कि शंकर नाम से उस विलक्षण लड़के का अब विधिवत संन्यास होने वाला है। सभी लोग जुटते हैं घाट पर, एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। एक बूढ़ी सी माँ एक गेरुआ वस्त्र रंग करके लाती है, कहती है कि मैंने इसको नारियल के पानी में धोया, गेरू मिलाया, नींबू का रस इसमें मिलाया, मैंने इसमें बहुत कुछ किया और ये रंग कभी उतरेगा नहीं, ये पक्की बात। कोई और वृद्ध व्यक्ति कहता है मैं इसके लिए ब्रह्मदंड लेके आया हूं, सन्यासी ब्रह्मदंड लेके चलते हैं, ये मैं इसके लिए स्वयं घड़ करके लाया। ये सारी व्यवस्था उनके लिए होती है और नर्मदा के घाट पर विधिवत रूप से आदि गुरु शंकराचार्य को संन्यास दिया लग जाता है। चारों ओर घाट गुंजित हो जाता है, सनातन धर्म की जय हो। संन्यास के 1 दिन पश्चात गुरु शंकराचार्य, अब शंकराचार्य को वो कहते हैं कि आज तुम मेरे पास रुकना। शंकराचार्य रुकते हैं, नींद तो नहीं आई? नहीं गुरुदेव, नींद का क्या प्रश्न है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बताइए। गुरु कहते हैं देख बेटा पतंजलि ऋषि के काल में हमारे वेदों की 1131 शाखाएं थी। आप सबके लिए भी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये जिनको मालूम है अच्छी बात है, नहीं मालूम नहीं बात। पतंजलि ऋषि के काल में जो कि केवल 2400 साल पुराना है, वेद की 1131 शाखाएं थी जो कि घटकर के आज केवल 21 बची हैं। वो बाकी 1110 कहां गई? नो वन हैज एन आइडिया। उन्होंने कहा कि किसी काल में, ऐसा मैंने स्वामी जी की पुस्तक में भी पढ़ा है कि किसी काल में जब वेद का पाठ शुरू होता था तो बिना रुके अगर पूरे वेद गाने हैं तो 50,000 घंटे लगते थे, लगभग 6.5 साल। 6.5 साल में वेद का एक पारायण पूरा होता था, जो आज घटकर के कुछ घंटों की यात्रा बची है। गुरु ने कहा देख बेटा वो वेद हमारे कहां लुप्त हो गए, वो ईश्वर का ज्ञान, वो श्रुतियां कहां लुप्त हो गई हमें नहीं पता। वो वैदिक संस्कृति उसका इतना पराभव हो चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और हमारे यहां राजतंत्र टूट गया है, वर्णाश्रम बिखर गए हैं, ब्राह्मणों का त्याग और तप समाप्त हो गया है, राजाओं के पास वो क्षमता नहीं बची जो उस वैदिक संस्कृति की रक्षा कर सकें। हम ऐसी दीन अवस्था में पहुंच गए हैं कि हम आज लगभग प्राय समाप्त होने के हैं। इसी में बौद्ध धर्म ने भी आकर के अनेकों प्रकार की हानियां हमें पहुंचाई हैं। तेरा जन्म बेटा सनातन धर्म का को पुनः जीवित करने के लिए हुआ है। तेरा जन्म और तेरा यह अवतरण वैदिक संस्कृति की पुनरुत्थान पुनः स्थापना के लिए हुआ है। तेरा जन्म वर्णाश्रम के सत्व को स्थापित करने के लिए हुआ है। तेरा जन्म राजतंत्र को वो बोध कराने के लिए हुआ है कि शांति की स्थापना के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक है। यह कार्य तेरा है और इस कार्य को पूरा किए बिना तुम नहीं जा सकते। गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। यहां से बेटा तुम सीधे सोमनाथ जाओ और पहले जाकर के राष्ट्र को अनुभव करो। सोमनाथ से काशी जाना, क्योंकि काशी हमारी वर्तमान ज्ञान पीठ है। सोमनाथ में पहले उन लोगों से मिलो जो आक्रांताओं से भाग करके अपना देश, गांव, परिवार छोड़ करके सोमनाथ में बैठे हैं। हमारे ही राजा आक्रांताओं से मिल करके उन्हें आक्रमण हेतु राष्ट्र में ले आते हैं। इस प्राचीन संस्कृति, इस देवतुल्य संस्कृति को छिन्न भिन्न करने में जो भी दुराचारियों ने प्रयास किए हैं, उसे जाकर के अनुभव करो। और आदि गुरु शंकराचार्य अपनी यात्रा वहां से आरंभ करते हैं।